ओम शांति। 8 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं, तुम बाप और वर्षे को, एक बाप को याद करो और वे एक बाप द्वारा जो आपको वर्षा प्राप्त होना है वो याद करो। प्रश्न, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुना। श्री मत पर चलने वालों की निशानी सुना। उत्तर, श्री मत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। श्री मत पर चलने वाले बच्चे बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे श्रेष्ठ सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्री मत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करते हैं, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ हो। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है वो समझ होती है, और उस समझ का आधार क्या होता है? राइट और रॉन्ग की समझ का आधार क्या होता है? बाबा। बाबा मीन्स बाबा की श्रीमत। ऐसे तो दुनिया में सभी राइट रॉन्ग करते रहते हैं, हर एक की अपनी आधार है। कोई बाइबल के आधार पर बोलेगा, कोई कुरान के आधार पर बोलेगा, कोई रामायण के आधार पर बोलेगा, कोई भागवत के आधार पर बोलेगा, कोई अपने कानून बना के बैठे हैं वो अपने कानून के आधार पर। हर एक अपने अपने तरीके से राइट और रॉन्ग समझता है, परंतु यहां जो बाबा के बच्चे हैं वो राइट और रॉन्ग का आधार बाबा और बाबा की श्री। बस समझते हैं कि राइट है और ये रॉन्ग है, और उसके बाद रॉन्ग को भी राइट समझते हैं। रॉन्ग को भी क्या समझते हैं? किसके रॉन्ग को राइट समझते हैं? दूसरे के रॉन्ग को राइट, अपने रॉन्ग को राइट नहीं। दूसरी सारी दुनिया रॉन्ग राइट है, परंतु ये रॉन्ग और राइट का डिसीजन केवल मैंने अपने लिए लेना है। बस दूसरे को रॉन्ग नहीं कहना, दूसरे को रॉन्ग कहने का संकल्प आया तो बाबा कहेगा ये रावण का बच्चा, मेरा कहना नहीं मान रहा। दूसरे को रॉन्ग नहीं कहना, वो राइट है। ठीक है, ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। पढ़ रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, छोड़ के भी नहीं जा सकते। कोई और ऐसा स्कूल है ही नहीं जहां जाए चले जाए, कोई ऐसा स्कूल है ही नहीं। ओ की चला बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये गीत किसका है? ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, जैसे कल गीत था सावधान, रात के राही तक मत जाना, सावधानी दे रहे थे। कौन कह रहा था? बाबा कह रहा था। आज कौन गा रहे हैं? बच्चे। जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा बाबा अब तो हम समझ गए, अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन हैं, ये सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं, सत्युग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहां दुख है। तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो यह बोलना सच है, ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे, उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहेंगे। झूठी दुनिया क्या है? नरक है, कलयुग अंत को कहेंगे झूठी दुनिया। कलयुग को शुरू में नहीं कहेंगे, क्यों? पूरी झूठी दुनिया अंत में बनती है। जब कलयुग शुरू होता है तो कितना सच होता है? हाँ, 25% सच होता है जब कलयुग शुरू होता है जी। हाँ, जब द्वापर शुरू होता है तो 50% सच होता है, त्रेता शुरू होता है तो 75% सच होता है, कलयुग के अंत में 0% सच, बिल्कुल झूठ। आज सारी दुनिया झूठ पर खड़ी है। कौन सा
25 होगी तो ना सत्य त्रेता हो, मतलब रुपया में से 40 होगी तो 50 ही होगा जी। वो
कौन
त्रेता भी 50 होगा?
क्यों 50 होगा?
25 सत्य हो गया, 25 त्रेता हो गया, 25
सत्ययुग जब खत्म हुआ तो 25% खत्म हो गया ना, तो बाकी बच गया 75। एक टांग टूटी ना, चार बैल की चार टांगे थी धर्म रूपी बैल की, उसकी एक टांग टूट गई तो 25% खराब हो गया कि नहीं हो गया? तीन हिस्से सच, एक हिस्सा झूठ।
दो टूट गई
तो आठ आने, आठ आने।
वही तो मैं कह रहा हूँ।
क्या कह रहे हो?
वही टांग की बात कर रहा हूँ।
टांग की बात करो तो जब सत्युग से त्रेता हुआ तो एक ही टांग टूटी ना,
चार टांग उनके खड़ा हुआ
है। सत्युग में चार टांगों पे खड़ा था, कोई बात नहीं समझ लेने दो, सत्युग में बैल चार टांगों पे खड़ा था, ठीक है, जब त्रेता शुरू हुआ तो एक टांग टूट गई तो 25 पैसे खत्म हुए ना, बाकी 75 पैसे तो थे। 75% तो सच था। फिर जब द्वापर आया तो दो टांग टूट गई, एक पहले टूट गई तो एक अब टूट गई, तो त्रेता में तो तीन टांग थी ना, कोई बात नहीं, त्रेता में तीन टांगे थी ना, तो एक टांग और टूट गई, तो आठ आना सच आठ आना झूठ हो गया द्वापर जब शुरू हुआ। और जब कलयुग शुरू हुआ तो आठ आने में से चार आने और खर्च हो गए, तो 25 रह गए। हर एक युग के चार चार आने हैं ना, तो 25% पहले खत्म हुए, 75 रह गए, फिर 25 और खर्च हो गए तो 50 रह गए, 25 और खर्च हो गए तो 25 रह गए, ठीक है, अब जीरो हो गई। हाँ, झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहेंगे, कलयुग अंत को कहेंगे, संगम पर कहेंगे ये है नरक और वो है स्वर्ग, तो उसके बीच में खड़े हैं हम। ऐसे नहीं कि द्वापर को नरक कहेंगे, उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी तमो प्रधान है, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे, संगम है ये हेल और हेवन का, एक तरफ है गंगा और एक तरफ है जमुना। आज हेल है और कल हेवन होगा, ये भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो बनते हैं त्रेता में, रजो बनते हैं द्वापर में, तमो बनते हैं कलयुग में, और अंत में तमो प्रधान। जिनका एक दो जन्म का पार्ट है, आते ना एक दो जन्म के लिए, वे भी सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म के लिए भी, जो एक साल के लिए भी आत्मा इस धरती पर आएगी, उसके तीन महीने गोल्डन, तीन महीने सिल्वर, तीन महीने कॉपर और तीन महीने और फिर घर चला जाएगा। उनका पार्ट ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती, सबकी एक मत तो नहीं होती, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है, बाप का ऑक्यूपेशन अलग, हर एक आत्मा का ऑक्यूपेशन अलग अलग, धर्म भी अलग अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग अलग, देखने में आता है ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है, सब भिन्न भिन्न है, कोई आर्य समाजी है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्म समाजी है, सन्यासी आदि जो भी हैं, सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम सनातन धर्म के हैं, हम ब्राह्मण धर्म के हैं, या हम देवी देवता धर्म के हैं, तो भी वो क्या लिखेंगे, हिंदू, उनके पास कॉलम ही नहीं है, क्योंकि और कोई सेक्शन तो है ही नहीं उनके पास। तो हर एक का फार्म अलग अलग होने का, होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है, सबको इकट्ठा बिठा के समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि ये तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वेत है। द्वेत माना दो मत, इनकी मत अलग है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो हैं नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। जो अच्छी तरह समझा सके उनको बुलाया जाता है। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं कि मैं ऊपर से बैठ करके किसी को प्रेरणा दे दूं, ऐसी ऊपर से देने वाली कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम चलता तो फिर बाप को परम धाम से इस धरती पर आने की जरूरत ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार, ये तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियां ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, सारी संदेशियां एक जैसी तो है नहीं। माया का बहुत इंटरफेयर है, माया बीच में बड़ा हस्तक्षेप करती है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। समझ में आइए, हाँ जी, हाँ समझ में आ गई बात। मतलब एक संदेशी कुछ आकर बता रही है तो दूसरी संदेशी को भेजो, कहीं वो बीच में अपनी मिलावट ना कर दे, बंडल ना मार दे। ठीक है सर, हाँ जी, आप बना लोगे, आपको कहा जाए कहानी सुनानी है सुना दोगे, क्या दिक्कत है। मतलब वो बैठते हैं जो 5 मिनट 7 मिनट जो भी बैठते हैं, उतनी देर में अपने मन में एक कहानी गढ़ लेते हैं। मैं ऊपर गई, वो बाबा ने उसको इमर्ज किया और वो ये बोला और ये बोला वो बोला, हाँ बस जो भी सुनाते हैं। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, जैसे वो बैठी है कुमारी जो है, वो कहते बाबा मेरे में आता है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं और मंडली बना दी उन्होंने। माया की प्रवेशता हो जाती है, ये बड़ी समझने की बात है, ये बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वे इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वे करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते ही नहीं, कोई फिर दूसरे की मत पर चलते हैं, कोई बाबा की श्री मत पर चल देते हैं, कोई दूसरे की मत पर प्रभावित हो जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हैं हो सकते हैं, सब एक जैसे सपूत बच्चे थोड़े हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं, अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत है, अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत हैं, ये भी समझाना पड़ता है। वैसे ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं जो सबके अंदर है। इसलिए बाप कहते हैं ये आसुरी दुनिया है, सतयुग में 5 विकार होते नहीं, सत्युग में पांच विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में ये बातें ऐसे हैं, परंतु
याद रहता सत्युग में बातें होते नहीं, सत्युग में सोना चांदी के महल, ये किसने देखा? किसी याद रहता है?
देखो बिल्कुल ठीक बात है, याद नहीं रहता ठीक, परंतु
प्रशंसा करते रहते हैं।
जब ये धरती द्वापर में टूटी, सत्युग और त्रेता में अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये नहीं थे, तो जब धरती में ये परिवर्तन आया, ये धरती टूटी, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, त्रेता के अंत में आज से 2500 साल पहले वहां पर एक सागर था, उसका नाम था टिथिज, उसका नाम था टिथिज, और वो सागर की जगह पर सोचो हिमालय पर्वत निकल आया, तो इतना बड़ा धरती में परिवर्तन आया, जो दुनिया स्वर्ग थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई, वहां का वो कहां गायब हो गई, और उसके ये पांच छह टुकड़े हो गए धरती के अंदर। तो जो धरती के टुकड़े हुए, एक अमेरिका बन गया, एक अफ्रीका बन गया, एक ऑस्ट्रेलिया बन गया, एक यूरोप बन गया, एक एशिया बन गया, ऐसे सारे टुकड़े हो गए। अब जो लोग जिस धरती के टुकड़े पर खड़े थे, उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सारे मर गए, परंतु वो जिस दुनिया में रहते थे वो स्वर्ग था, उन्होंने हर जगह ये बात मिली है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, वहां उन्होंने अपने बच्चों को ये बात बताई, उन्होंने कहीं इशारा लिख दिया कि हम जा रहे थे वो स्वर्णिम दुनिया थी, वो स्वर्ग था, ठीक नहीं? चाहे आज आप अंग्रेजों के टाइम वाले रहने वाला कोई मिल जाए तो वो कहेगा आज से अंग्रेजों का जमाना अच्छा था, वो कहेगा। आप भी हाँ, आप भी कहेंगे कि हमारा बचपन जो अच्छा था ना, वो आज की दुनिया नहीं है, हर एक कहेगा। तो इसी प्रकार से स्वर्ग था, उसका इशारा सभी जगहों पर उन्होंने अपने बच्चों को बताया। अब वो लिखा गया तो लिखा गया ना, इसलिए बाकी किसी और देश के लिए नहीं लिखा, भारत तो सोने की चिड़िया है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जिन्होंने शास्त्र बनाए वही ऊंच हुए ना, जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो हैं मनुष्य, व्यास ने लिखा महाभारत वो भी मनुष्य, वाल्मीकि ने लिखी रामायण वो भी मनुष्य, ये तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बना देते हैं, मैं कोई समझदार व्यक्ति आया उसने जो सुना दिया वो फिर शास्त्र उसका बन जाता है, जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है, तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उसकी महिमा गाई परमात्मा की, सबका बाप वो एक है, एकस के हम बालक, बाप कहते जाकर धर्म स्थापना करो, ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं, वो तो भेजे मैंने, वो तो ड्रामा अनुसार आए, बाबा ने क्या भेजे वैसे कह रहा है कि मैंने भेजे भक्तों को खुश करने के लिए, ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा ने अपने टाइम पर आना है, आकर के अपना धर्म प्रचार करना है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं मुझे कोई नहीं भेजता, वे हैं मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं, मतलब ये भी भक्तों की बात है। अभी दो तीन दिन पहले बाबा ने कहा उनको मैसेंजर नहीं कह सकते, पैगंबर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो मेरा पैगाम थोड़ा लाए हैं,
वो तो अपने टाइम पर
आए, अपने टाइम पर आए हैं, और जो उनको समझ में आया था, कब समझ में आया था? इस समय जो मैंने पढ़ाया, इस समय उनको जितना समझ में आया उसी आधार से आकर उन्होंने समझाया। باقی وہ میرے پیغمبر نہیں ہے، میرے کو وہ جانتے نہیں، مجھے کوئی بھیجنے والا نہیں، مجھے میسنجر و پیغمبر نہیں کہیں گے، میں تو آتا ہوں بچوں کو سکھ شانتی دینے، مجھے کوئی نے کہا نہیں، میں تو خود مالک ہوں، میں تو خود مالک ہوں۔ مالک کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، پرنتو ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے مالک کا ارتھ سمجھا ہے؟ وہ مالک ہے، ہم ان کے بچے ہیں تو ضرور ورثہ ملنا چاہیے۔ بچے کہتے ہیں ہمارا بابا، تو باپ کے دھن کے تو مالک ہو، ہمارا بابا تو باپ کے دھن کے تم کیا ہو گئے؟ مالک ہو گئے، باپ کی ساری جائیداد کے مالک۔ میرا بابا، بچے ہی کہیں گے، میرا تو پھر بابا کا دھن بھی میرا، میرا بابا تو بابا کا دھن بھی میرا۔ ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا شیو بابا، باپ بھی کہیں گے یہ ہمارے بچے ہیں۔ باپ سے بچوں کو ورثہ ملتا ہے، باپ کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، بےحد کا باپ ہے ہی سورگ کا رچیتا۔ بھارت واسیوں کو بھی پراپرٹی کس سے ملتی ہے؟ شیو بابا سے ملتی ہے۔ شیو بابا شیو جینتی بھی مناتے ہیں، شیو جینتی کے بعد پھر ہوگی شری کرشن جینتی، پھر شری رام جینتی، پھر شری رام جینتی۔ بس مما بابا کی جینتی و جگت امبا کی جینتی تو کوئی گاتے نہیں۔ شیو جینتی، پھر رادھے کرشن کی جینتی، پھر رام سیتا جینتی، پھر رام سیتا جینتی۔ جب شیو بابا آئے تب شودر راجیہ وناش ہو، جب تک شیو بابا نہ آئے تو شودروں کا راجیہ وناش ہو نہیں سکتا۔
سیتا جینتی، رادھا جینتی تو نہیں مناتے؟
کون؟
کرشن کی
جینتی ہوتی، کون منا، کون نہیں منا؟
رام نومی ہوتی ہے یا شیو کی شیوراتری ہوتی ہے۔
بھکتی والوں کی بات کر رہے ہو یا بابا کے بچوں کی بات کر رہے ہو؟
نہیں، بابا کے ساتھ ہی، جیسے آپ نے ابھی پچھلی لائن جو پڑھی ہے اس کے اندر بتایا تھا کہ وہ سب سے پہلے
کرشن کی جینتی، پھر رام سیتا جینتی۔
یہ سیتا کیوں لگا دیا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں،
ایسا ہے کہ جو رام کے سچے بھگت ہیں، رامائن کے اندھے بھگت ہیں، وہ سیتا جینتی بھی مناتے ہیں اور رادھا جینتی بھی مناتے ہیں، گیتا جینتی بھی مناتے ہیں، کرشن جینتی بھی مناتے ہیں، وہ ہنومان کی بھی جینتی مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ جن کی بھی، جتنے بھی ہیں ان سب کی جینتی مناتے ہیں۔ جو کارتکے کے بھکت ہے وہ کارتکے کی جینتی مناتے ہیں۔ مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا، اب گنیش ہے، گنیش کی جینتی کے ساتھ ردھی سدھی ان کی پتنیاں بھی ہیں، جو گنیش کے پکے بھگت ہیں وہ ردھی سدھی کی بھی جینتی مناتے ہیں، گنیش کے وواہ کی بھی جینتی مناتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے اچھے بھگت ہیں کرشن کی شادی تلسی کے ساتھ بھی کراتے ہیں، کتنے اچھے بھگت ہیں، وہ بھی شادی، ان کی بھی شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، ہر سال پنڈت کو کتنے دہیج مل جاتے ہیں جی۔ ہاں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، سیتا جینتی پر، اب جو ابھی چل رہا ہے نا مہینہ، ابھی سیتا جینتی منائیں گے اور جتنے گھر میں جو جو اپنے گھر بلائے گا وہ سارا دہیج پنڈت جی کو دے گا کہ ہمارے گھر سے سیتا کی کرشن کے ساتھ شادی کرا دو، مطلب پنیہ ملتا ہے۔ اور دہیج سارا کا سارا پنڈت کا، وہ مورتی بیچاری ادھر ویسے بیٹھی رہتی ہے، تلسی کا ایک بروا وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، چل بھی شادی ہو گئی، اور یجمانوں کو جو ساتھ گئے تھے ان کو، ہاں تلسی کی شادی کریں گے وہ۔ जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो, ये राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वे आते हैं जरूर, बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने के लिए। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगत अंबा भी हैं, आ जाते हैं। अब ये समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है, बाप परम पिता परम आत्मा आते हैं पतितों को पावन करने, वे नाम रूप से न्यारा है, वे नाम रूप से न्यारा है, तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? यदि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है तो फिर उसकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता है, फादर को तो सब मानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परम आत्मा, आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप वे परम पिता परम आत्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े, सतयुग में तो आ ना सके। वे प्रलब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है, ये संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंच है ब्राह्मण, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी तीन धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। कब कोई धर्म नहीं होता? जब सत्य कृता होता है। वहां कोई नहीं कहता कि हम सनातन धर्म वाले, क्यों? क्योंकि और कोई धर्म ही नहीं। जब दो धर्म हो तो नाम लिया जाए ना, जब धर्म ही एक है तो उसको नाम लेने की जरूरत ही नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं, वे ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते, वे ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रलब्ध पाओगे, बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रलब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायती राज्य है, उनके पंच हैं, नहीं तो पांच पंच होते हैं, नहीं तो पांच पंच होते हैं, यहां तो सब पंच ही पंच है, यहां तो सब पंच ही पंच हैं, जो भी आज हैं कल नहीं, आज मिनिस्टर हैं कल उनको उतार देते, एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते, यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है, इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं, ये तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वे कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप है तो बाप की श्री मत पर, बाप है तो बाप की श्री मत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे। वे तो है ही सुखदाता, आज्ञाकारी। बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठू। ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना। माताओं के सिर पर कलश रखा तो वे फिर गौ दिखाते हैं, तो वे फिर गौ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी इस दुनिया में। कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं। वहां कोई रोगी नहीं, रोगी नहीं होता वहां ना। कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बुढ़ों को तो खुशी होती, बुढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। बच्चे तो सारे बनेंगे, तो हम क्या बनेंगे। हम जवान से जा रहे हैं ना भाई, चाहे 65 साल के जवान हो, चाहे 60 साल के जवान हो, चाहे 80 साल के जवान। ये कैप्टन को पता
है।
हाँ, बच्चे हो वा जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला कृष्ण तो है नहीं। अब कृष्ण तो कोई बंसी वाला है ही नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो हम श्रीमत, तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक ये बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्री मत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जो मान जानते हैं वे बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद भी नहीं जानते। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, स्पूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है, उसे वेरीफाई जरूर कराना है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे, नशे में रहे ईश्वरीय सेवा करनी है, नशे में रहकर क्या करनी है, ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ, सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान, मास्टर रचयिता भव, क्या बनो, मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकुम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे पालो फादर करो, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो। और आपके साथ वो कैसा भी व्यवहार करे फिर भी आपने उसे क्या देना है, सम्मान देना है, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है, सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं, बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।